हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आंशी को अमन ने एजेंसी ऑफिस बुलाया था, इसलिए वो वहां के लिए निकल रही थी। रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से आंशी टैक्सी से उतर गई और पैदल चलने लगी। धूप ना होने की वजह से मौसम काफी खुशनुमा था और वो अपनी इस वॉक को एंजॉय करते हुए चल रही थी। वैसे भी आंशी काफी दिनों बाद ऐसे खुली सड़क पर बिना किसी डर के चल सकती थी, तो वो इसे काफी एंजॉय कर रही थी। वहीं आंशी के पीछे एक अनजान खतरा लग चुका था। जॉनी, जिसने फेयर में बॉम्ब प्लांट किए थे, वो तो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था, लेकिन उसके साथी ने आंशी का चेहरा देख रखा था। आज जैसे ही उसने आंशी को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया और विधिक तक पहुंचने के लिए उसने आंशी को किडनैप करने का सोचा। उसने अपने एक साथी को भी अपने प्लान में मिला लिया। वो दबी आवाज में उससे बोला, देख माइकल, आजकल अपन का टाइम काफी खराब चल रहा है। रॉबिन बॉस के जाने के बाद सब खत्म सा हो गया है। विधिक राणा वो शख्स है जिसके आगे रॉबिन जैसे लोग कुछ नहीं होते थे। अगर अपन उसके हिट लिस्ट में आ गए तो अपने अच्छे दिन फिर से आ जाएंगे। माइकल ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर बोला, ठीक है जैक, मैं तैयार हूँ। उन दोनों के फेस पर ईविल स्माइल थी और वो आंशी के पीछे चले गए। वहीं चलते हुए आंशी एक ऐसी जगह पर आ चुकी थी जहां ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी। अचानक उसने महसूस किया कोई उसका पीछा कर रहा है। आंशी ने जल्दी से मुड़कर देखा तो माइकल और जैक उसके पीछे थे। उन्हें देखकर उसने धीरे से कहा, समझ नहीं आता, मैं मुसीबत तक पहुंचती हूँ या मुसीबत मेरा रास्ता ढूंढ लेती है। अच्छा खासा टैक्सी में चल रही थी, अमन ने भी कहा था ध्यान रखना, पता नहीं बीच में ये दोनों कहाँ से आ गए। आंशी ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और इधर उधर देखा। ज्यादा लोग आसपास नहीं होने की वजह से उसे घबराहट भी होने लगी थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को नॉर्मल किया और तेज कदमों से चलने लगी। माइकल और जैक समझ चुके थे कि आंशी को उन पर शक हो चुका है, तो वो दौड़कर उसके पास जाने लगे और एक झटके में आंशी के पास पहुंच चुके थे। माइकल ने आंशी का मुंह पकड़ा ताकि वो चिल्ला ना सके और जैक उसे घसीटते हुए वहां से सुनसान रास्ते पर लेकर गया। आंशी खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मार रही थी। लगभग 5 मिनट में वो सफाई से एक बंद गली में पहुंच गए थे। वहां आसपास कोई नहीं था। वहां पहुंचते ही माइकल ने आंशी का मुंह छोड़ दिया। माइकल के मुंह पकड़ने की वजह से थोड़ी ही देर में आंशी की सांस फूल गई थी। वो हांफते हुए बोली, देखो तुम जो भी हो मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। अगर किसी चोरी के चक्कर में मेरे पीछे हो तो सीधे सीधे मांग लो ना, ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, फिर भी जितने भी हैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन जो ज्वेलरी पहनी है वो काफी एक्सपेंसिव है। आंशी को एजेंसी ऑफिस पहुंचने में देर हो रही थी, इसलिए वो उनसे मामला सेटल करने में लगी थी। उसकी बातें सुनकर जैक हंसते हुए बोला, अब तक सुना था खूबसूरत लड़कियां बेवकूफ होती हैं, आज देख लिया। बोलते हुए उसने आंशी का मुंह पकड़ लिया और उसे दबाते हुए बोला, तुझे अपन याद नहीं है तो अपन ही बता देता है। कुछ महीनों पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एक मेले में, जिसमें तुमने शोर मचाकर पूरी जनता को इकट्ठा कर लिया था। तेरी वजह से मेरा दोस्त जॉनी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तुझे पता भी है तूने किस किस का काम बिगाड़ा है, अब ना तेरी खैर नहीं है। जैक की बातें सुनकर आंशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो समझ गई थी कि मामला उतना भी सीधा नहीं है जितना वो समझ रही थी। आंशी कुछ बोलती उससे पहले जैक ने माइकल से कहा, चल इसका मुंह बंद कर, यही हमारी खुशियों की चाबी है। जैक के कहते ही माइकल ने आंशी का मुंह पकड़ लिया था। फिर जैक साइड में किसी से बात करने के लिए आ गया। उसने एक गाड़ी मंगवाई थी ताकि वो आंशी को यहां से ले जा सके। वहीं दूसरी तरफ माइकल के अकेले होने पर आंशी ने फायदा उठाते हुए पीछे से उसके पैर पर जोरदार लात मारी। थोड़ी ही सही, पर उसकी भी एक फिजिकल ट्रेनिंग हुई थी। आंशी के अचानक इस तरह अटैक करने पर माइकल लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हट गया। आंशी ने उसके पेट पर 1 से 2 पंच मारे और फिर हांफते हुए धीरे से बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वैसे तो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं होता है और ना ही कोई दुश्मनी निकालनी होती है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं देर हो गई। पता भी है कितना इंपॉर्टेंट काम करने जा रही थी, तुझसे तो अब पुलिस निपटेगी। आंशी ने इतना ही कहा और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वहां से भागने लगी। वो थोड़ी ही आगे पहुंची होगी कि किसी ने पीछे से उसके बाल पकड़कर खींचे। इससे आंशी के मुंह से चीख निकल गई। उसने मुड़कर देखा तो वो जैक था जिसने उसे पकड़ रखा था। अच्छा तो तुम बेवकूफ होने के साथ साथ शातिर भी हो, क्या लगा था हमसे बचकर भाग जाओगी? बेटा अब तुम्हारा भागना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया है, जैक ने कहा और आंशी के गाल पर जोरदार तमाचा मारा। उसका थप्पड़ इतना जोरदार था कि आंशी का गाल लाल हो गया था और कुछ ही देर में उसके गाल पर जैक की उंगलियों के निशान थे। उसका साथी जल्द ही गाड़ी लेकर पहुंच चुका था। गाड़ी के आते ही जैक ने आंशी को गर्दन से पकड़कर उसे घसीटते हुए गाड़ी के पास लेकर आया और उसे अंदर धकेल दिया। उसके इस तरह जबरदस्ती करने पर आंशी की ड्रेस की एक स्लीव फट गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। इस वक्त आंशी को ऐसे लग रहा था जैसे वो विधिक राणा से भी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। गाड़ी में आते ही माइकल ने आंशी को बेहोश कर दिया था। गाड़ी में बैठते ही जैक ने शाहिद को कॉल किया। कोई भी विधिक से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था।
उसने जैसे तैसे शाहिद के नंबर अरेंज करके विधिक को कॉल किया। विधिक उस वक्त चंडीगढ़ पहुंचा ही था और इस वक्त वो दोनों शाहिद के घर पर थे। शाहिद ने कॉल रिसीव करते ही कहा, ये नए नंबर से कौन कॉल कर रहा है बे? देख अभी मैं बिजी हूँ, टाइम खराब मत कर, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मोबाइल में घुसकर मारूंगा तुझे। शाहिद की बात सुनकर जैक थोड़ा घबरा गया, फिर उसने जैसे तैसे हिम्मत करके कहा, अरे नहीं सर जी, बहुत ही जरूरी बात थी, बात अपने बिग बॉस से जुड़ी हुई है, विधिक राणा सर से। विधिक का नाम लेते ही जैक ने तुरंत मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया और इस वक्त विधिक भी उसकी बात सुन पा रहा था। जल्दी बोलो, सुन रहा हूँ मैं, मोबाइल स्पीकर पर करते ही शाहिद ने कहा। जैक के पास एक ही मौका था, इसलिए वो जल्दी जल्दी सब बताने लगा। अरे सर जी, आपको याद तो होगा कि चंडीगढ़ में जब पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कुछ महीनों पहले, उस मेले के अंदर, तब एक लड़की थी जिसने चिल्लाकर पूरे प्लान को खराब कर दिया था। पहले रॉबिन सर तो बाद में विधिक सर ने उसे पकड़ने का काम सौंपा था। अब तक हाथी नहीं आ रही थी और अचानक मुझे आज दिख गई। अब बताओ आप इसे कहाँ लेकर आना है? जैक के सब बताते ही विधिक को भी याद आ गया था कि उसका पहला प्लान किसी लड़की की वजह से खराब हो गया था। उसे वक्त से बहुत गुस्सा भी आया था और जिसने भी उसे प्लान अनसक्सेसफुल होने की न्यूज बताई थी उसने उन दोनों को मार दिया था। फिर अगले ही पल विधिक को याद आया कि उसने सब कुछ छोड़ दिया है। विधिक के इशारा करने पर शाहिद ने कॉल म्यूट कर दिया। तब विधिक ने कहा, मेरा आखिरी काम शिवम चतुर्वेदी को मारना था, अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसे बोलो कि वो उस लड़की से खुद ही निपट ले, मारना है तो मार दे वरना कहीं पर छोड़ दे, लेकिन पता तो चले वो लड़की है कौन। आप उसे मार नहीं सकते तो क्या, और भी सजा दे सकते हैं, मैं उन्हें उसे यहाँ लाने का बोलता हूँ। विधिक के मना करने के बावजूद शाहिद ने अपने घर का पता बताकर आंशी को वहाँ लाने का बोल दिया था।
कॉल करते ही विधिक ने शाहिद की तरफ देखकर कहा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं सिर्फ 10 मिनट यहाँ रुकूंगा, तुम्हें जिसका चेहरा देखकर मुंह दिखाई देनी है दे देना, मुझे मेरी बटरफ्लाई को लाने जाना है, मैं पहले ही बहुत वेट कर चुका हूँ और मुझे ज्यादा वेट नहीं करना। ठीक है, 10 मिनट तो रुक जाइए, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लेकर आता हूँ, शाहिद ने कहा और वहां से चला गया। वहीं शाहिद की तरफ से एक मौका मिलते ही जैक काफी खुश हो गया। उसने माइकल को सब कुछ बताने के लिए उसकी तरफ देखा तो उसने महसूस किया माइकल अजीब नजरों से आंशी को घूर रहा था। जैक ने उसे डांटते हुए तुरंत कहा, एह इसे ऐसे मत देख, इसे वहां तक लेकर भी जाना है। हाँ तो चले जाएंगे, कौन सा वो भाग रहे हैं, माइकल ने सिर हिलाकर कहा। देखना कितनी खूबसूरत है कि इसे नजर ही नहीं हट रही, पहले अपना काम करते हैं बाद में उन्हें भी दे देंगे, करेंगे तो वो भी इसके साथ यही, पहले इसके मजे लेंगे और बाद में मार के फेंक देंगे, फिर हम क्यों पीछे हटे, तेरा पता नहीं लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। माइकल ने जैक के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और आंशी पर टूट पड़ा। वो उसकी गर्दन को पूरी तरह काटे जा रहा था जैसे उसने आज से पहले किसी लड़की को हाथ भी ना लगाया हो। मुझे ना तुझे अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था, तूने कॉल करने से पहले ये बात बोली होती तो फिर भी कुछ करने दे सकता था, पर अब मुझे अपने प्लान को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है, इस लड़की को बोरे में रखना था ताकि तेरी इस पर नजर ही नहीं पड़ती, जैक बोला और फिर उसने माइकल को आंशी से अलग कर दिया। उसके ऐसा करने पर माइकल उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देख रहा था। जैक ने आंशी की गर्दन पर देखा तो वहां थोड़ी ही देर में काटने के निशान बन गए थे। उसने माइकल को गुस्से में घूरा और फिर गाड़ी चला रहे अपने आदमी से कहा, आगे से एक बोरी तो दे। उसने जैसे तैसे करके आंशी को एक बड़े से बोरे में डालकर उसे बंद कर दिया। शाहिद ने उसे जो जगह बताई थी वो ज्यादा दूर नहीं थी इसलिए वो जल्दी वहां पर पहुंच चुके थे। विधिक शाहिद के साथ कॉफी पी रहा था तभी उनके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजा खोलने से पहले शाहिद ने विधिक की तरफ देखकर कहा, वो लोग आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ, आप चाहो तो अंदर जा सकते हो। विधिक ने उसकी बात पर हामी भरी, वो अंदर जाने को हुआ लेकिन पता नहीं क्या सोचकर उसके कदम वहीं पर रुक गए। अगले ही पल जैक और माइकल बोरी के साथ अंदर पहुंच चुके थे। विधिक को साक्षात अपने सामने देखकर जैक बहुत खुश हुआ, उसने मुस्कुराकर उसे सिर झुकाकर सलाम किया और फिर बोरी की तरफ इशारा करके कहा, इसी में है वो लड़की, इसने हमारा बहुत काम खराब किया है, इसकी वजह से जॉनी पकड़ा गया, दो बार उसने इसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन चकमा देकर निकल गई, आज भी भागने की पूरी फिराक में थी लेकिन हमने इसे पकड़ ही लिया। देखो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, इसे यहाँ से वापस ले जाओ और इसके साथ जो भी करना है कर लो, मैं इन सबसे दूर रहना चाहता हूँ, विधिक ने चिढ़ते हुए कहा। विधिक की बात सुनकर माइकल जल्दी से बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि आपको इससे कोई लेना देना नहीं होगा, चल इसको लेकर चलते हैं यहाँ से। माइकल बोरी की तरफ बढ़ने लगा तभी शाहिद तेज आवाज में बोला, रुक वहीं पर, हाथ मत लगाना उसे। फिर वो जैक से बोला, चल जल्दी से बोरा खोल और निकाले से बाहर। विधिक को समझ नहीं आ रहा था शाहिद ऐसा क्यों कर रहा है। जैक बोरा खोलने लगा, विधिक को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो वो वहां से जाने लगा।